रागी अब तो हरी नाम लो लागी, कित छोड़ी हम मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी अब तो हरी नाम लो लागी। उसको गाने से तो हम गा नहीं पाते लेकिन उसका अर्थ अच्छा है। तो मीरा जी कहते हैं कहती है कि अब तो समझे साधन, अब तो हरी नाम लो लगी, हरी ही नाम ले लगा है, नाम लेने लगा है। अब दूसरे मैं क्या कहूँ, अब तो हरी भी अपना नाम लेगा। अब तो हरी नाम लो लगी, सब जग को यह माखन चोरा, सब जगत में उनको जानते हैं, सब जगत में जो जानते माखन चोर कर माखन चोर करके, नाम धरो बैरागी। अभी तो बैरागी बन बैठा है, अभी चोर था अभी बैरागी बना है। कित छोड़ी हम मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, कोई मोहन मुरली वो कहाँ छोड़ कर आया पता नहीं, कहाँ छोड़ कर आया, कित छोड़ी सब गोपी, सब गोपियों को कहाँ छोड़ा। अब तो हरी नाम लो लगी, अभी हरी नाम लेने लगी। मुड़ मुड़ाई दोरी कटी बांधी, मुड़ मुड़ाई मतलब मुंडन करके, अभी मुंडन करके मुड़ मुड़ाई दोरी कटी बांधी, कटी में डोरी बांध करके माथे मोहन टोपी, मोहन टोपी मतलब हाँ नहीं पगड़ी में नहीं बांधते, टकला बोलते ना, और टकला मन में उसी को मोहित करता है। बाल नहीं है तभी भी सबको मोहित करता है, जो टोपी पहनते हैं, टोपी पहनते थे तो उसकी टोपी पहन के मुकुट पहने, टोपी बिना बाल बिना भी गोल्ड आउट करता है। मात जसोमती माखन कारण बांधे जात पाम, मात जसोमती जसमती मैया, माखन चोरी गड़बड़ किया था इसलिए जिसके पांव को बांधे थे। श्याम किशोर भय नव गोरा, वही श्याम किशोर अभी गोरा बना है, पहले श्याम था अभी गोरा। श्याम किशोर भय नव गोरा, चैतन्य जा को नाम, वही गोरा बना, उसका नाम क्या पड़ा, चैतन्य जा को नाम। पीताम्बर को भाव दिखावे कटी कोपी निकसे, पहले तो पीताम्बर बना था, अभी तो कटी में कोपी निकसा है, कोपी नहीं बांधा है। गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण वशे, इस प्रकार गौर कृष्ण की मीरा उनके दासी बनना चाहती, दासी बनकर क्या करे ना, रसना ही कृष्ण वशे, जी हमें केवल कृष्ण नाम ही वसे। अच्छा है जो गाना जानते हो हिंदी क्षेत्र में, मीरा जी तो बहुत मानते हैं, बड़े प्रामाणिक हैं, अब वो भी चैतन्य महाप्रभु के लिए गाना गाती है, तो समझ ली जब जब पता चल गया कि यही कृष्ण है, वो मान ली कृष्ण, तब तो बोलते गौर कृष्ण की दासी मीरा। पहले तो बोलता मेरी तो मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई नहीं, लेकिन अब बोलता है कि नहीं गौर कृष्ण की दासी मीरा, अब ऐसे मान ली बिल्कुल जो कृष्ण थे वही अभी चैतन्य महाप्रभु बने, बिल्कुल उसको मान महाप्रभु कृपा हुआ तभी तो नाम जान ले। ठीक इसी प्रकार इसमें भी नाम क्यों है कहते हैं कि अनुभव नहीं हरि से अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। सुमिरो नाम रूप सुमिरो नाम रूप बिन देखी कोड़ी लगे ना दाम, बोलते जो नाम लेते हैं वो पहले रूप नहीं देखना आवश्यकता है, रूप बिना देखी, रूप ना देख करके नाम ले सकते हैं। तो इसके लिए ना कोड़ी देना पड़ता है, ना दाम देना पड़ता है। कोड़ी मतलब ना कोई पैसा खर्च करना पड़ता है, ना बार्गेनिंग करना पड़ता है। तो एक प्रमाण देते हैं, बोलते हैं कि केवल बोलने से होगा। हरि से हरि का नाम बड़ा है। क्या प्रमाण है? प्रमाण है उनके जल डूबत गजराज पुकारो। पानी में गजराज जब डूबकर मर रहे थे तब उन्होंने नाम को पुकारा, आए आधे नाम। हाथी है जानता नहीं था, पुकारना मरते समय पुकारा तो आधे नाम बोल पाया, आधे नाम बोल पाया, आए आधे नाम। नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। बोले हो चिंता रहता ही, अरे आधा तो लिया, बदनाम ना हो जाए। बोले ये तो आधा मुझे तुम आए नहीं, तो ऐसे भागे दौड़े हाई स्पीड में आकर उसको बचाए। ये अच्छा पॉइंट, जिस सागर को लांघ सके ना बिना फूल के राम, जिस सागर को लांघ सके ना बिना फूल के राम। भगवान राम को जब जाना पड़ा लंका, ब्रिज बनाना पड़ा, सागर में बांध बना करके गए, कूद गए हनुमान उसी को लेके हरि का नाम। हनुमान जी जब गए तो ब्रिज बनाना पड़ा क्या? कूद गए। कैसे कूद गए? लेके हरि का नाम। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो इस प्रकार नाम को नामी से और बड़ा मानते हैं। जब हनुमान ने चले गए सागर को लंघ करके, अब जा करके वहां पहुंचे, रावण का फोटो भी तो पहले नहीं देखे थे उन्होंने। कैसे पहचानेंगे? पहचान नहीं सकते। केवल एक हनुमान दशग्रीव है, जा करके पूरा बोले उनको रावण को ढूंढना नहीं था, ढूंढना किसी को ढूंढना था? सीता को। उनको भी तो नहीं देखे थे, कैसे ढूंढेंगे? बहुत भारी परेशान, इतने बड़े प्रोजेक्ट लेकर गए, कोई रूप नहीं उनके पास। सीता की पिक्चर भी नहीं, किसी पहचानी सीता को नहीं, ना रावण को नहीं। जाकर लंका पहुंचे, पहुंच करके लंका में एंट्री करते समय तो गेट पास शूटर्स नहीं था, वहाँ लंकिनी थी, है ना, जानते ना वो देवी। वो गेट में खड़ा हो गया तो उसको एक स्लाब दिए। तो उनको ज्ञान हो गया, जब एक चांटा उसको मारी तो उनको बिल्कुल ज्ञान हो गया और तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि उनको वरदान था। वरदान क्या? उनको बोला गया था कि कभी अगर कोई बंदर आएगा और आपको मारेगा चांटा कस करके, तो उसी दिन समझ लेना कि लंका ध्वंस हुआ और रावण मरेगा। तुरंत अभी गया उसने समझ, तो उसी दिन समझ हाथ जोड़ दिया, बोला मैं समझ गया आप तो जाएगा। तो अंदर मुझसे जा करके पूरे लंका के हर भवन के अंदर जाके झांके, इधर उधर चारों तरफ, कभी कभी द्रौपदी को देखकर, द्रौपदी क्या उनको ना मंडोदरी को देखकर, तो हनुमान जी होंगे ही पिताजी, वही पिताजी होंगे। मंडोदरी बड़े सुंदरी थी, उनके भवन, उनके व्यसन, उनके रावण के ऐसे भी। बाद में सोचे धिक्कार, बोले हाय तू पशु बुद्धि है, बंदर है तो वो भी बंदर है। सीता जी ऐसे किसी यहाँ कह सकते ये व्यसन राम को छोड़ करके सीता जी तो बहुत दुखी होते होंगे, ये किसी से यहाँ कैसे रह सकते हैं, उनके अंतपुर में रावण के अंतपुर में ना, नहीं आपने युक्ति देकर तो फिर नहीं माना, पूरे अंत महल सारे ढूंढान कर विभीषण को देखे देगा तो ढूंढान करके हताश होकर के अशोक वाटिका में आए, अशोक वाटिका में आकर के तब उनको भरोसा भाग सीता जी देख कर तब कैसे भेंट करें, हमेशा तो चारों तरफ राक्षसी लोग सब उनको घेर कर रहते थे, जब बहुत डांट पीट करके चले गए तो हनुमान जी उतरे, सोचे कि मैं अगर उतरूँ तो मुझे देखकर डाउट करेंगे, अब ये भी इसमें बहुत माया भी रसूल गए, राम 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 नाम लिए, सीता जी देखिए कौन राम नाम ले रहा है, तो उतर के आए, फिर भी सीता जी को राम नाम में रावण भी ले, रावण भी कभी राम का लुक लेकर आता था, वो क्या समझा ना बोले नाम लेता है वो कौन सा, तो विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने भगवान से एक लेकर गया था, इतना जरूरी था, भगवान से क्या लेकर गए थे, रिंग लेकर गए थे मुद्रिका, वो मुद्रिका जब दिखाई सीता जी ने बोले ये तो प्रभु के हाथ, तो फिर उनसे परिचय हुआ बातचीत हुआ वो करके उनको तो बोल रहे थे कि आप बैठूंगा अभी अभी ले जाता हूँ खत्म, किसी को नहीं पता चलेगा मैं हम पर चला जाऊंगा राम जी को पता चलेगा, चलो बैठो, सीता जी बोले ना मैं नहीं जाऊंगा ऐसे, आप जाकर बोलिए तो श्री राम को आएंगे अपने बल से युद्ध करेंगे रावण को मारेंगे, मुझे धार लिया तो नहीं इसको आपको दर्शन जाना, तो फिर जब बातचीत हुआ हमसे करके जाने निकलने के लिए तैयार हुए, वो अंगूठी की तो रखी सीता जी, अब मैं आपसे मिली इंटरव्यू हुआ उसको किसी राम विश्वास करेंगे, किसी मानेंगे कि मैं सब कुछ आपसे भेंट हुआ, सीता जी ने अपने बथामणी है ना कहता है मतलब क्यों निकालते थे वो दिखाना वो पहचानते हैं उसको मेरा उसको लेकर क्या है, तो आखिर संवाद दिया सब कुछ हो गया, जब भगवान राम को पता चला कि लंका को जला दिया हमने, लंका को जला दो खा रहा था बेचारा उनको मारपीट के लेकर के दंड देने के लिए उसको मांग कर रखे, और तुम कौन है बंदा इतनी बदमाश कर रहा है, बदमाश कर सब तोड़ काट दिया, उनको आइडेंटिटी पूछे उन्हें आइडेंटिटी करके बोला दासो हम रघुनाथ, दासो हम रघुनाथ हस्ते मेरा यही आइडिया, दासो हम रघुनाथ से, तो उनको रावण ने सोचा कि बंदर है उसको मारूंगा तो मेरा बदनाम होगा, लोग बोलेंगे देखो एक दूत है और उसको फिर बंदर है, रावण इतने महापराक्रमी राजा होकर कि बंदर को मारता है मेरा नाम खराब होगा, तुझे नहीं मारूंगा, दंड देना है बहुत बदमाशी किया, क्या दंड देंगे कुछ विचार विचार तो मेरी तरफ कुछ बहुत बड़ा है उसमें आग लगा देते हैं के मरेगा जो हो जाएगा, तो कुछ में कई सारे कपड़ा बांध करके कृष्ण वगैरह डाल करके लगा दी आग, इनको पता नहीं था हनुमान जी को पहले से देवताओं के वरदान था अग्निदेव उनको जला नहीं सकते, जलाया उनको तो जला नहीं लेकिन उसको पहले घुमा रहे थे उनको पकड़ करके कल निकाल देखो बंदर को आग लगाते हैं, लेकिन हनुमान ने पूछे से हिलाए उनको ही आग लगाओ छोड़ दिए, था बड़ा पूरा आग जल रहा था, कुछ उठाते थे कि हवा लगता है तो आग ज़्यादा लगता है, तो बंदर है जंप करने लगे, वो गाली बजा रहा, देखो बंदर कूद रहा है, आग जल रहा है, बोले और अच्छा लग रहा है, और कूदते हैं, कूद करके भवन में बैठे, पूरा फैला दे, ये आग पकड़ गया उधर, फिर दूसरे के यहाँ लगाए, फिर दूसरे के सारे घूम घाम कर पूरे लंका को लगा दिया आग। बड़े भयंकर स्थिति कर दिए। तो राम जी पता चला, भगवान राम ने बोले कि हनुमान जी आपकी लंका जला दी? नहीं, गया कहाँ था वो लंका, गया कहाँ था पैसों काम को? अच्छा, और लंका गए ना, मैं थोड़ी मैं जा सकता हूँ, किसी मेरा जाने की शक्ति कहाँ, मैं कैसे जा सकता? भगवान हाथ जोड़ गया, बोलते लंका नहीं गया, उसे तो मना करते, लंका में नहीं गया था। तो सीता जी के आदेश ना, वो तो क्या राजा के ठाव करके वो तो वो किया, लेकिन मैं नहीं गया था, आप मुझे बोलते, मेरा प्रकट नहीं। तो फिर किसी सीता जी के साथ नहीं, वो आपके अंगुली आप भेज रहे थे सीता जी के पास, आपका अंगूठा रिंग, तो आप जिसको भेजेंगे तो जाएगा, वो जा रहा था, मैं उसके ऊपर बैठ के चला गया, जा रहा था कौन, हम क्योंकि आप भेजे, आप भेजेंगे तो वो तो जाएंगे, चाहे जड़ हो चेतन हो, आप अंगूठी माता जी के पास भेजे तो अंगूठी जा रहा था, समझता था मैं ऊपर बैठ के चला गया, उसके ऊपर गाड़ी जा रहा था, मैंने वो सवारी किया, मैं बैठ के चला गया। भगवान राम हंसने बोला, अच्छा बड़े चतुर हो, आप नहीं गया था, हो गया था, आप बैठे था ना, सब पर आया किसी अंगूठी दे दिया। अंगूठी तुम आप दे दिया, हाँ ना, तो माता जी ने भेजे ना अपने मथा में, वो आ रहा था उसको बैठा है। तो इतने बड़े काम करने के बावजूद जो भगवान के दास हैं उनके अंदर अहंकार नहीं है, वो ये नहीं विश्वास करते, मानते नहीं कि मैं कुछ किया, मैं क्या करूँ, आपने भेजे तो उसी के सहारा करके मैं चला गया, उधर माता जी भेजे उसके सहारा। तो जब समुद्र के बांध हो रहा था, सब बड़े बड़े बंदर बहुत कई टनों टनों वजन के पत्थर लगा करके श्री राम कह करके फेंकते थे, तो पत्थर नहीं डूबता था, पानी में तैरता था। भगवान देखते थे, लक्ष्मण साधु देखो इतने बड़े बड़े पत्थर पानी में तैर रहा है, ज्योति भगवान पहले समुद्र को डांट कर बोले थे, इसी वजह से समुद्र दल के मारे डुबाता नहीं। तो फिर भगवान खड़े होकर थे, बोले आप इतने सो काम कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं एक पत्थर उठाए, उठाकर फेंके, वो डूब गया। सब खड़े थे, भगवान बोले देखा आप लोग सब इतने शक्तिशाली हैं, आपने फेंकते हैं पत्थर तो तैरता है, मैं फेंका तो डूब गया। तो हनुमान जी ने तुरंत खड़े हुए, बोले तो डूबेगा ही क्यों, आप जिसको त्याग देंगे फेंक देंगे उसको समुद्र का ताकत है टिक के रहेगा, जिसको आप हम लोग आपके नाम लेकर फेंकते हैं तैरता है, लेकिन आप ही स्वयं इसको छोड़ देंगे, आप इसको आश्रय नहीं देंगे, उसकी संपत्ति जैसे दे सकते, तो दे ले। कितने अच्छे व्यक्ति था तो हनुमान जी ऐसे हैं जिनका पास बल भी था साथ साथ बुद्धि भी था, और वो बुद्धि हमारे जैसे बुद्धि नहीं, दुष्बुद्धि बुद्धि, भगवान को भगवान के जस को बढ़ाने वाला बुद्धि, हर प्रकार से इसे पॉइंट निकालते थे तो भगवान की जस बुद्धि है, हम कोई बुद्धि निकालेंगे हमारा जस बुद्धि होने के लिए, हम बुद्धि है ही नहीं, लेकिन अपना कुछ ना हो करके केवल भगवत जस बुद्धि के लिए उनको बुद्धि के इस्तेमाल करते थे। तो जो भगवान के सचमुच दास होते हैं, भक्त होते हैं, उनका ये ध्येय रहता है, उनका ये लक्ष्य रहता है कि अपने पास जो भी कुछ है थोड़ा बहुत बल बुद्धि यही तो है, और चेष्टा ये केवल भगवत जस वृद्धि के लिए करना चाहिए, अपने लिए नहीं करना चाहिए। जिस समय हम अपने इंद्रियों की चेष्टा, अपने पास जो तथाकथित बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, गोली है, जो कुछ है, अगर केवल भगवान जस वृद्धि के लिए, भगवत जस वृद्धि के लिए करें तो ही होगा भक्ति। अगर वही शक्ति जो हमारे पास है, शक्ति सामर्थ्य बुद्धि वृत्ति, उसको अगर आपने लिए करें तो फिर भक्ति नहीं होगा, है ना। मैंने कुछ कहा तो जो हम लोग जो कभी भक्त बनने का, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, ये सीखना चाहिए कि जो हमारे पास भगवान ने दिए थोड़ा बहुत, उसको भगवान के लिए ही उपयोग करना चाहिए। भगवान के लिए क्या? भगवान के गुणगान के लिए, ना कि अपने लिए या कि अपना गुणगान के लिए, तो फिर ये नहीं होगा। जो भी बुद्धि है उनके लिए लगाना चाहिए। किसका कोई प्रश्न है? यस।
अभी आपने बताया हमें जो भी भगवान ने दिया है, तो सभी क्या होता है? कभी कभी जैसे पता है कि मंदिर में सभी विभाग हैं, सब अपने ओर से पूरा प्रयास करते हैं, तो कभी कभी निर्णय लेना, निश्चय करना बहुत कठिन हो जाता है कि दो मार्ग हैं या दोनों के बीच में बच्चे हैं, एक बच्चे दो सेवाए हैं, उस स्थिति में कैसे समझना चाहिए? दोनों वक्त सेवा करना चाहते हैं, दोनों वक्त कुछ चीज चाहते हैं, या किसी एक प्रकार से करना चाहते हैं, मतभेद हो जाता है
तो सेवा दो है ना, सेवक दो है,
सेवक दो है, सभी सेवा करते हैं, अलग अलग
सेवक दो है, सेवा एक है,
अपने तरह से सेवा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, जो रिसोर्सेज है या लोग हैं वो सीमित होते हैं, तो दो लोग सेवा करना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से सेवा करना चाहते हैं,
तो उसको कोई दिक्कत नहीं,
कॉन्फ्लिक्ट हो जाता
है। एक देखिए सेवा के टाइप, जैसे कोई एक उदाहरण लीजिए, कुकिंग करना एक सेवा हुआ, तो इसको दो कुक कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग एक ही काम है, लेकिन दो जन है कुकिंग करना, या दो जन है एक कुकिंग कर रहा है, एक कटिंग कर रहा है, कि और कुछ कर रहा है, दो सेवा है
नहीं,
या दो सेवक है,
जैसे फेस्टिवल है, हाँ। और कुकिंग भी एक्स्ट्रा है और रेगुलर सेवा में भी एक्स्ट्रा जरूरत है,
हाँ।
और लोग सीमित है जिनको सेवा में लगा सकते, तो दोनों तरफ से मांग आती है और दोनों तरफ से ही जल्दी मांग है, लेकिन क्योंकि लोग सीमित है तो किसी को तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उस समय क्या होता है कि हम सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति को एडजस्ट करना चाहिए, तो उस समय कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनको दोनों का आवश्यकता है, दोनों जैनिक हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं लोग सीमित हैं, तो दोनों।
अच्छा, तो आपके प्रश्न जहाँ तक मैं समझता हूँ, कभी ऐसी परिस्थिति आता है कि दो प्रकार की सेवा है, दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण सेवा है, हमारे पास सेवक सीमित है और उस सेवा के डिमांड है कि अनेक सेवा का आवश्यकता करता है, सेवा के इस प्रकार के सेवा है कि कम से कम एकाधिक सेवक आवश्यकता चाहिए, लेकिन आपके पास ज़्यादा सेवक नहीं, अभी आप यहाँ जो सीमित लोगों को यहाँ लगाएं या वहाँ लगाएं, इस प्रकार स्थिति में जो सच्चे सेवक होगा उनका मनस्थिति ऐसे होता है कि वो तो ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढता होगा कि कब ऐसे सुजोग मुझे मिले ताकि मैं मेरा पास जितने शक्ति है उसको ऑप्टिमम यूज करूं, लेकिन थोड़ा सा एक विग्रह उसमें तो सिर्फ फुल यूज नहीं होता, मैं तो पुजारी हूँ, बस सुबह दोपहर शाम पूजा कर लिया, इसे कोई बड़ी बात है, लेकिन फेस्टिवल के समय में दर्शन खुला रहता है 10-10 घंटा, अगर 10 घंटा एक पुजारी कर पाए तो उनके मन में लोभ होना चाहिए कि आई विल बी दी होल सर्विस, मैं ही पूरा सेवा करूँगा, ये जो सेवा करने का जो लालसा है वही प्रूव करता है कि वो और किसी को मेरे हाथ में डाल नहीं चाहता। भागवत में प्रसंग आता है यहाँ पर सुषु महाराज ने प्रार्थना करते हैं भगवान को, जब भगवान ने आए थे सुषु महाराज के यज्ञ में, सुषु महाराज ने यज्ञ बंद कर दिए। ये चतुर्दश कंध में आएगा, आप आगे पढ़ेंगे उसमें सब्जेक्ट। तो भगवान ने खुश होकर बोले तू क्या वर मांगो। तो पृथ्वी महाराज ने तो भगवान की इस प्रकार एकादशी कृपा को देख करके गदगद हो गए। बोले प्रभु आप मुझे इतने बड़ी कृपा करके इस कृपाशित दृष्टि से मुझे देख रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये सब यज्ञ करके मैं इतना प्रसन्न नहीं हुआ था, मैं आपसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मैं यज्ञ किया नहीं, बंद कर दिया। पृथ्वी महाराज ने यज्ञ स्टॉप कर दिए, इंद्र डिस्टर्ब करा करके सम प्रार्थना की। बोले इंद्र ने 100 यज्ञ किया था, फोटो टांगिर किया होगा भगवान, लेकिन तू यज्ञ मानते थे मैं साक्षात आया, फोटो क्या टांगिर। मैं साक्षात आया, तुझे प्रसन्न हूँ और तूने इंद्र को क्षमा कर दिया, इसलिए मैं और प्रसन्न हूँ। क्योंकि क्षमा होने से मैं प्रसन्न होता हूँ। भगवान कहते हैं बाकी कोई उपाय से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। यदि भगवान भक्तों के पास ऐसे गुण होते क्षमा आदि नाम लिए, क्षमा आदि गुण होता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ। बरह गुणित बर मांगो क्या चाहते। तो तुम्हारा बोलते मुझे बल जाता ना क्या, आप इतने प्रसन्न होकर मेरे दृष्टिपात कर रहे हैं, उससे बढ़कर वो क्या वो हो सकता है। जब साक्षात परमेश्वर परम प्रसन्न है, कृपा दृष्टि से मुझे देख रहा है, उससे बढ़कर वो बल क्या चाहिए। आपकी कृपा हो जाए तो कौन सा चीज मुझे अप्राप्त रह जाएगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं मैं कुछ मांगू तो प्रभु मैं यही मांगना चाहता हूँ, अद्भुत मांग मांगूंगे, 10,000 काम हो जाए। क्या मांगे? कर्ण अयुतो अस्मि 10,000 ईयर्स। अरे हाँ, पर दो कान है इसके लिए भी आप है ऐसे बोलते हैं, अच्छा नहीं सुनूंगा, गलत सुन लिया इसलिए गड़बड़ होता है ना। वो 10,000 कान मानते भगवान के लिए अद्भुत मां पर मांगे 10,000 कान न, क्योंकि आपके दस्त सुनना चाहता हूँ। तो आपके दस्त आप नहीं बोलेंगे, आपके दस्त भी बोलेंगे नहीं। तो आपको नहीं करूँ मैं क्या करूँ। आपके डिवोटी दीजिए जो आपके दस दान करते हैं और मुझे काम दीजिए सुनूंगा, आप डिवोटी दीजिए बोलेंगे बस यही। इससे मैं परम तृप्त हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले वाह क्या मांग है, रिकॉर्ड में कर दिया उसे। मुझे साइड आउट करके बोलते आपकी डिवोटी चाहिए मुझे, और प्रूफ भी दिया क्योंकि आपको मैं लूंगा, मैं आपके जस्ट गुणगान सुनना चाहता हूँ। आप अपना गुणगान तो आपसे करेंगे नहीं, भगवान खुड़े अपना मिसाल को गुणगान करें। कोई फायदा क्या मिला सुबुल्ला सिंह गुणगान को लेकर, इसलिए आपके डिबोटी चाहिए। आपके डिबोटी जो आपके गुणगान करते हो, और इतने सारे डिबोटी दो कि कई हजारों गाने से सुनता रहूँ भगवान जस श्रवण करो। भगवान उन्हें केवल सुनता रहो भाई, नहीं कुछ करूँगा सुनने के बाद सेवा करूँगा। क्या सेवा करोगे? तो बोलते हैं कि मैं इतने समर्थ नहीं कि नारद जैसा टीचर बनूं, लेकिन नहीं कर सकता कि बड़े बड़े और जैसे काम करते हैं कईयों का कुमार आदि लिए और किसे नाम बोले इतने, ये सब काम तो मैं कर नहीं सकता। मैं सबसे छोटा हूँ, क्षेत्रीय हूँ, रजोगुण है, कुछ पैशन है करने का, तो इसलिए बाकी कुछ कर भी नहीं सकता, बुद्धि बुद्धि है नहीं। तो मैं मिनियल सर्विस करूँगा, खूब डांट कर करूँगा, है ना। क्या मिनियल सर्विस करना था? नाम से शरण सेवा। शरण सेवा का ठिका तो एक ले रखिए, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट होगा। कौन लिया है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी सर्वतोभावे मैं शरण सेवा का कॉन्टैक्ट ले चुका है, और दोबारा कहाँ से आपके लिए प्रोपोजल निकालूँ। जो ही तुम्हारा शरण है उसको उन्होंने बराबर पूरा रिजर्व कर रखा है। तो पृथ्वी महाराज बोले मुझे बता है लक्ष्मी जी की, जब भी आपने वक्ष विलासिनी हृदय में बैठाने के पोस्ट दिए, लेकिन वो यहाँ से उतर के अभी चरण में बैठती है, क्योंकि चरण सेवा का इतने प्रभाव है, तो इसलिए यहाँ से उतर के अभी चरण में बैठती सेवा करने के लिए। अरे मैं तो चरण सेवा करना चाहता हूँ। चरण सेवा मतलब लक्ष्मी जैसे कंप्लीट नहीं, लक्ष्मी तो माधुरी भाव के श्रीमती है, मैं आपके माधुरी भाव आपके पत्नी नहीं बन सकती, नहीं माफ करे, ये तो जगत जननी है लक्ष्मी, मैं तो पद संवाहन आलत चामर आपके भोग बनाऊं, भोग खिलाऊं, घर झाड़ू पोछा करूं, ये सब पद सेवा के अंदर आता है। इस प्रकार पद सेवा में करना चाहता हूँ। भले ही तो लक्ष्मी और पार्टी उसको कर रहे हैं, लक्ष्मी और कंपनी बोले वो कर रहे हैं, मैं भी करना चाहता हूँ, उसमें क्या है। तो भगवान बोला अच्छा वही सेवा करना चाहते हैं, हाँ मैं भी दुनिया की सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान कुछ कहने से पहले पृथ्वी महाराज फिर कहते हैं कि प्रभु मुझे पता है अगर मैं जा करके सेवा कर बैठूँ तो लक्ष्मी जी आएगी देखेंगी ये कहाँ से आ गया, मेरे सेवा में ये कहाँ से आ गया। मतलब जो सेवक को सेवा करना चाहता है वो जब सच्चा सेवक है वो कभी नहीं चाहेगा कि और कोई आकर के सेवा में हाथ बांटे। अगर ज़्यादा सेवा तो मैं ही करूँगा, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डू मोर सर्विस। अब मैं अपने सेवा को कम करके बस बनना चाहता हूँ और ज्यादा नहीं, ये सेवक का सच्चा मूड नहीं। वो तो बोलेगा उसको मैं सदगुण करके और करूँगा, भले मेरा खाना पीना थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन नहीं करूँगा, दूसरा किसी को नहीं दूंगा, माई सर्विस मैं करूँगा। मतलब लक्ष्मी का सही भाव है वो नहीं करने देगा, मेरा भी भाव है मैं करूँगा सेवा को। बोला कि इसमें निश्चित कि आपस में झगड़ा हो जाए, लक्ष्मी का मेरा भोड़ हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी नहीं सेवा सुनना नहीं चाहेगी, मैं भी सेवा सुनना चाहूँगा, मैं भी सेवा करना चाहूँगा। बोला अक्सर होड़ हो जाए, कंपटीशन झगड़ा हो जाए दोनों में लक्ष्मी के साथ मेरा, तो हे प्रभु मैं आपसे कृपा करूँ आप मेरा सपोर्ट करेंगे, आप मेरा सपोर्ट करेंगे। क्यों 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 नहीं रोटी मैं करते हूँ नया हूँ, वो तो और जगत जननी है आपके सहधर्म में बड़े पावरफुल है ना, मैं बिल्कुल हिंदवान दीन ही नए हूँ, तो इसलिए कृपा करके तुम मेरे सपोर्ट आप करेंगे और मैं इसलिए करना चाहता हूँ। और अगर सेवा के कभी डिमांड ज्यादा भी आए तब भी और को सुनने देकर उसको ही मैंने पूरा करूंगा। तो जो सच्चे सेवक होते हैं वो कभी कभी ऐसे उत्सव का समय आता है, उत्सव के समय वो देखते कब ऐसा उत्सव का समय आएगा तो मैं द्विगुणित त्रिगुणित करूंगा मेरे सेवा को, मेरे शारीरिक आवश्यकता को कम करके सेवा को बढ़ाऊंगा। ये सब समय ऐसा सुझोग थोड़ी मिलता, कभी कभी मिलता है, और ये सुझोग को मैं पांच लोग आठ बुलाकर खड़ा करूंगा तो मैं जितना करता हूँ इसे करो कम करो मैं उनको दे दूंगा। अरे तो सेवा वृद्धि का जो लोभ है वो लोगों की इसी प्रति होगा, है ना। जो सेवक अपनी सेवा में परितृप्ति अनुभव करता है, इसमें संतुष्टि अनुभव करता है, वो सेवक कभी नहीं चाहेगा कि मुझे कोई और ज़्यादा असिस्टेंट चाहिए, वो चाहेगा मैं ही करूँ मैं ही पूरा करूँ, क्योंकि इससे मुझे इतने प्राप्त होता है सुख। आप जिसमें खुशी होते हैं, जैसे दो गुलाब जामुन है, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुलाब जामुन, आप चाहेंगे कि दो है मैं क्या खाऊं और चार पांच आ जाए बांट कर खाएं, तो चाहेंगे ना आप चाहे कोई ना आए कुछ देखते ही हम ही खा लें इसमें नजर ना पड़े, क्योंकि आप इसमें इतने तृप्ति करते हैं कि दूसरा कोई आ जाए तो क्या आधा पड़ जाएगा, आधा घंटा पड़ जाएगा चल आ जाएंगे, माँ तो इतना ही कोई ना आए कबाड़ बंद कर मैं खा लूँ, यही भाव होना चाहिए। ठीक जो उसको सेवा में तृप्ति प्राप्त होता है अनुभव करता है तृष्टि वास्तविक हो नहीं जाएगा कि चार को लेकर जोड़े मेरे से अपच हो जाए तब किसी बोला भाई जाए अब मेरे से तो अपच हो जाए पहले से ये कौन सा साल में चार बार आता है इसको नहीं 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 डायजेस्ट कर लूंगा उसको। इस भाव में हो तो वो अपने आप बोलेंगे आप बोलेंगे हम थोड़ा डिस्ट और दो सेवक देता हूँ, नहीं 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 क्यों इतना देते हैं मुझे जरूरत नहीं बताऊंगा नहीं चाहिए मुझे। ये स्वभाव जब आएगा ये सच्चा सेवा का भाव, जब ये भाव ना होकर बोलेगा क्या नहीं देते सर्विस इनको दे दिए तो सेवा भाव नहीं है। सुन कुछ आंसर मिला एनी मोर क्वेश्चन
भी ये देखा जा सकता है कि अगर दूसरे को सेवा नहीं मिला
सुनाना भी हो सकता है
दूसरे को। हाँ प्रभु ने बोलता है इतने कृपालु है, हाँ हाँ दूसरे सेवा नहीं कर पाता है। अगर ये भाव होता तो पृथ्वी महाराज सोचते कि लक्ष्मी जी को कष्ट होगा, हम नहीं जाते वहाँ। नहीं, उसको सेवा नहीं मिला वो अपना सेवा ढूंढे, सेवा की कमी थोड़ी है, मेरा ही सेवा करेगा यही तृप्ति मिलेगा उसको, है ना। और अपना सेवा ढूंढे, मेरा खुराक से क्यों भाग लगा हुआ करके, है ना। आप किसी की कृपा करना चाहते हैं ठीक है, तो उनको प्रचार कीजिए, भगवान के नाम सिखाए कुछ कीजिए, लेकिन आप जिस सेवा से तृप्त होते हैं उसको नहीं देना चाहेंगे, ये आपने, ये आपने प्राइवेट वैसी बात है मेरा। इसी वजह से पृथ्वी महाराज का जो मूड है वो भी जो कह रहे हैं कि लक्ष्मी भी मेरे से झगड़ा करेगी, लक्ष्मी क्या बड़ी भक्त नहीं है, तो सोचेगा कि भाई मैं जब हमेशा से जुगपत करते आया हूँ, वो बेचारे नए आए हैं उनको थोड़ा दे दो चांस, वो भी करें ना, मैं किसी छोड़ू। सेवा के प्रति इतने लालसा है, सेवा के प्रति इतने उनके अटैचमेंट है, आसक्ति है, बोले ना तो सेवा करो। भगवान के अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत प्रकार से सेवा है, आप करो। मैं भी शिक्षा रहा हूँ, सीखी मैं कपड़ा वो तो प्रभु से लिए सेवा मांग करते, डायरेक्ट महाराज डायरेक्ट भगवान को मांग रहे मुझे ये सेवा दीजिए, वो जानते हैं लक्ष्मी जी सेवा तो उनको मांगने से वो नहीं देगी। ऐसे हो सकता है जो सेवक है सच्चे उनके पास सेवा मांगने के लिए मत जाओ, वो कैसे सेवा बोले मैं भी कहीं और सेवा करना चाहता हूँ, आपसे सीखने आया ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, तो भी ट्रेन लगा तो वो दे सकते हैं। जो सच्चे सेवक है ही कैन ट्रेन यू अप हाउ टू डू सेवा, लेकिन फिर उनका पोस्ट ले लेंगे वो ये ठीक नहीं है ना। कोई कोई एक मैनेजर है तो आप मैनेजर करने के लिए उन्हें सीखने के लिए जाओ सीखा, लेकिन आप बोले मैं सीखूंगा आपके पोस्ट सुनूंगा अब वो निकल देंगे, अच्छा है क्या। उनको ही खाने के लिए बैठे किसी नजदूर उनसे सीखना चाहो फिर आप जाकर करो। You have spent most of your life in Vrindavan Dham. Can you please share some of your experiences of your Brahmachari life? What inspired you to continue for so many years? ऐसे तेरे ऐसे दुर्गुण सुनने के लिए क्यों इच्छा करता है? जिसको सुनने से आपका भक्ति वृद्धि होगा, आपको जो उसको सुनना चाहिए, इसी सुनेंगे जंक लगा कथा उसमें से क्या होगा। दिस इज नॉट ए गुड थिंग टू हियरिंग, है ना। आप जैसे सो उज्जवल दिखाई पड़ रहे भक्त लोग से सेवा में संलग्न है, हम लोग आपकी तरह तो नहीं थे ना, इतने पढ़े लिखे थे ना, इतने सेवा के भाव था ना सुविधा था, जैसे तैसे केवल भगवान के हित की कृपा ही माना जाएगा, और उन्होंने टांग खींच कर कैसे भी दिन पार कर दिए, अब तक कार में लगाया और करेंगे करके आशा है, लेकिन हम तो बिल्कुल अपदार्थ हैं, अपदार्थ संपूर्ण रूपेण है। ठाकुर जी ने अपने कृपा बल से ही घिसट कर ले जा रहे हैं, दिन पारी कर रहे हैं, यही केवल है, हमारा 1% कोई खूबी नहीं। वो इस अनाथ शराब आदि अपदार्थ सभी कुछ सेवा ले लेते हैं, ये बड़पन उनका है, लेकिन हमारा तो कैसा कुछ नहीं। ब्रज में यदि भी ब्रजवासी थे अनेक, लेकिन असर भी कुछ कम नहीं थे, और जितने ब्रजवासी थे भगवान को छोड़कर रहेंगे क्या? भगवान कहते सो गए, वो उनको छोड़कर रह नहीं सकते, लेकिन रह कौन गए? जो असुर के परिवार जो उनके थे वो तो गए नहीं भगवान सर, वो मरवार गए, जो उनकी फैमिली में वस्तु थे वो बाकी रह गए, तो उनके उनके संग में कुछ लोग रह गए है ना। एनी मोर क्वेश्चन? ये अच्छा टॉपिक है डिस्कस करना, सेवा के बारे में नहीं, प्रभु जी ने अच्छा टॉपिक उठाए थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन हमारे पास ये प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि सचमुच हमको सेवा में टेस्ट नहीं मिल रहा है। मेन पॉइंट इज हम लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन जीव तृप्ति जो आनंद जो अनुभव होना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं। केवल करना चाहिए, नहीं करने से अथॉरिटी गुस्सा होगा, ये इसीलिए कर रहे हैं। वैधि भक्ति और राग भक्ति, वैधि भक्ति में शास्त्र भय और रूल्स रेगुलेशन क्यों मानते हैं? रूल्स रेगुलेशन इसलिए पालन करना चाहते हैं भय के कारण, अगर नहीं करूंगा तो पाप लगेगा। शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है कि करना चाहिए, भगवान को सुबह उठ के रात में भाग लेना चाहिए, इसे करना चाहिए, इसे प्रणाम करना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए। वेद शास्त्र के भय, आपने का पतन का भय, इस भय के कारण हम नियम पालन करना चाहते हैं। सच बात है ना, रियल यही बहुत कुछ नहीं, लेकिन ये सच बात मैंने सही भक्ति नहीं, जिसे भय के कारण करते हैं सही है, हम भय को डरेंगे नहीं, हम उनको प्रेम करते हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ, मैं उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसके लिए करूँ, इसके लिए उठूँ, इसके लिए वो है, ये सहज स्वाभाविक सेवा था। और ये करूँ तो मुझे लोग क्रेडिट बोलेंगे कि अच्छा कर रहा है, नहीं तो मेरा पॉइंट वृद्धि होगा, अथॉरिटी खुश होंगे। इस प्रकार के भावना लेकर जब करें तो इसे भगवान के साथ आपका संबंध अभी तक हुआ ही नहीं। भगवान के साथ सहज संबंध होकर के जैसे वहां होता, फिर वो थोड़ी वेट करेगा, रूल्स रेगुलेशन थोड़ी देखेगा नहीं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि अभी ये कंटामिनेशन पीरियड है, अभी हम नहीं करना है, बहुत अच्छा सेवा से छुट्टी, आज सूर्य ग्रहण है, आज आपको आप 3 बार ड्रेसिंग करना, मैं फोन लगाना लेकिन हम इसका मैंने तो करते ही है, यहाँ छुट्टी नहीं मिलती, बाकी जाना मैं पुजारी भी होता है, ड्यूटी बाउंड पुजारी, वो बोलते छुट्टी है, इस प्रकार छुट्टी है ना। जितने भी संसार में जितने काम करने वाले सर्विस लोग जो नौकरी वैसे करते हैं, वो हमेशा यही मन में आशा रखते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा हॉलीडे मिलता है, यही ढूंढते ना, वो जब मिले इतने कम से कम हमारा कितने 6 डे वीक ना, 3rd डे वीक, 5 डे वीक इट्स गुड, लेकिन क्या 6 डे वीक मुँह से खा के बैठता है किसका, अगर 3 डे वीक 3 डे वीक कितने अच्छा है, मैं भी सेवा करना चाहता, यही क्यों मैं सेवा करना चाहता, ठगना चाहता, सेवा कम करना चाहता, फायदा पूरा लेना चाहता, लेकिन चिटिंग करूँ चिटिंग, इसमें सेवा का भाव थोड़ी होता है, इसमें कई से फसका करके काम करा लूँ, जितने काम करके पूरा फायदा होता ये भाव होता है। लेकिन हम भी अगर सेवा में वास्तविक तृप्ति अनुभव नहीं करते हैं, केवल ड्यूटी बाउंड होकर के वो कहते हैं कि हमको चाहिए इसलिए करना पड़ता है, तो तो ये फिर सेवा सेवा नहीं। हम भी भगवत सेवा में, मंदिर की सेवा में, भक्तों की सेवा में भी अगर किसी भक्त लगाएंगे कि चलो मुझे ये गेस्ट केयर करने के लिए लगा दिए, करना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छा क्या करूँ, मुझे काम दिए ना, तो ये सेवा स्वभाव नहीं। ये अंदर से सहज भावना होना चाहिए ना, मुझे यही करना है, इससे मुझे परम तृप्ति प्राप्त होता है। तृप्ति हमको सोने में खाने में तृप्ति होता है, करने में प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए कहीं से हम ढूंढने के कई नुकसान, कोई प्रणाली ढूंढने के, जिस प्रकार से हम कम करके करें वो कम चलता है, कम चल रहा है ये। तो ये भाव जब तक जागृत नहीं होता है तो सच्चा सेवा नहीं होता। जैसे कभी कभी अभी गर्मी लग रहा है, सो गर्म पड़ रहा है, बहुत बढ़िया लस्सी होता, ठंडा लस्सी होता, अरे बनाओ थोड़ा ठंडा लस्सी, गर्म लगता है। अरे भूख लगाया, भूख लगा पिला, मैंगो शेक बनाया, तो ठाकुर जी के सामने तुलिस पत्ता डाल करके ताली मारे थो, अब किसके लिए बनाया थे? ठाकुर जी के लिए थोड़ी बनाया थे, बनाया थे आपने तृप्ति के लिए, लेकिन स्टाम्प लगा दी, भोग लगा, तुलसी पत्ता डाले मतलब हो गया स्टाम्प, स्टाम्प चढ़ गया, बस लूटो खाओ। ठंडी के समय में अरे गर्म गर्म पकौड़ा होता, परोठा आलूदम होता है ना, बनाएंगे आप, आपने रुचि के हिसाब से बनाएंगे और तुलसी पत्ता मंजरी डाल करके थाली मार के लाएंगे, आप प्रसाद वहाँ प्रसाद खाओ। किसको धोखा देंगे हमने, भगवान को ये पसंद है कि नहीं, तो जिन्हें अपनी पसंद अपनी रुचि के अनुसार हम करते हैं और स्टाम्प लगा कर ले जाते हैं, इसे थोड़ी होता है। इसमें ये भक्ति नहीं है, भक्ति का आरोप लगाते हैं, आरोप समझते ना, जैसे आप चोरी नहीं किया है लेकिन आप बोलते आप चोरी किया, कि मुझे झूठा आप झूठा आरोप आरोप क्यों लगाते हैं, मैंने नहीं किया। ठीक इसी प्रकार भगवान भी सोचते हैं तो किया नहीं, क्यों रहना बताइए। इसको आरोप सिद्धांत कहते हैं, हम सेवा नहीं करते लेकिन सेवक होने का, सेवा करने का आरोप लगाते हैं, स्टाम्प लगाकर। जब इस प्रकार भाव हमारा मन में आएगा कि हम अपने क्या चाहते हैं, क्या अच्छा लगता है, उसके लिए नहीं करेंगे, भगवान को क्या प्रसन्न करेगा, क्या चाहेगा, ये तो हमको पता नहीं, भगवान को क्या चाहेगा, अपने चाह का अंतर नहीं। इस सीजन में, इस समय की सेवा में भगवान के जो सेवक थे सचमुच, जो उनके सख्या सेवक गोपियाँ है, यशोदा माँ है, रोहिणी देवी, जो इस प्रकार प्रमाणिक सेवक, वो किस प्रकार भगवान को क्या चीज देकर कैसे सेवा किए थे, उसको देख करके हम करें तो सेवा। जैसे हम करते हैं कि गर्मी के समय में भगवान को चंदन लेपन किए थे, लधानी कहती ना, विषम होइले तनु चंदन मिले तेरी, चंदन चुहा लगा करके भगवान गर्मी महसूस करते हैं कि बेली फूल की माला और चंदन के लेप करते हैं भगवान को, इसलिए तो इसलिए हम भी करें, क्योंकि ये भगवान को प्रसन्न किया था, तो भगवान को जो श्रेष्ठ सेविका है उनको इस प्रकार लेकर सेवा किए थे, और आपने भी नहीं किए तो उन्होंने किए थे, तो इसी को फल प्रदान किया भगवान को, उस समय उन्होंने पानी में जल विहार कराए थे, तो इसीलिए हम भी उन्हीं को फल प्रदान, हम भी जल विहार कराए। लेकिन आजकल तो हम ऐसे करते हैं, जिस समय हमारे डिबूटी आ जाएंगे उस समय जल विहार कराएंगे, भले ही ठंडी क्यों ना हो, दिसंबर जनवरी में कर देते हैं फूड फेस्टिवल, ठाकुर जी बोलेंगे बताओ इससे पानी में तो खुद ही उतरता, गर्म पानी में नहाता हम गर्म पानी में नहाते दोबारा मुझे लेकर वो खुश खुश कराना। तो इसे जब तक हम उनको देख करके सोचेंगे, और उनके जो श्रेष्ठ सेवक गण है, सेविका गण है, जो उनको जिस प्रकार सेवा किए थे उसी भाव को अनुकरण करके अगर हम कर पाए इस प्रकार, तो हम मन में सोचेंगे कि भगवान अवश्य सेवा में तृप्त होते होंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन से नहीं किया, अपने इच्छा से नहीं किया, भगवान के जो प्रामाणिक सेवक सेविका हैं उन्होंने उनके स्पर्श की तृप्ति किए थे, मैं उनके अनुगमन किया, मैं उनको अनुगमन किया था। इसलिए कि किस चीज से उन्हें पहले से कुछ हुए हैं, इस प्रकार से इस प्रकार से, तो इस प्रकार में करना, ये सेवा श्रेष्ठ है। उनसे देख सकें कि इस सीजन में ठाकुर जी को उनके जो सेवक ठाकुर जी तो अनंत काल सेवा पा रहे हैं, उन किस प्रकार किस किस प्रकार सेवा दिए थे, क्या क्या आइटम दिए थे, किस किस प्रकार सेवा करके भगवान को प्रसन्न किए थे, उसी को हम फॉलो करना चाहिए। ना कि जिसने हमको पसंद है और उसको करें और नाम चढ़ा दें, इसे भगवान कृष्ण होकर किसी को ध्यान। तो इस प्रकार के जो सच्ची भाव आए तो उसमें फिर आप जैसे मैनेजर लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं उठाना पड़ेगा ना, उसमें मैनेजर लोगों को टेंशन उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो सेवक स्वयं ही उत्फुल्लता से खुशी होकर सेवा को अपॉर्चुनिटी ढूंढता को मिला वो ज़्यादा प्रसन्न होगा, ज़्यादा सेवा करना चाहे। एक कहानी आप सुने होंगे माधवेंद्रपुरी पाक का, माधवेंद्रपुरी पाक में बाद में अजातित्व वृत्ति का संत थे। अजातित्व वृत्ति जानते ना, किसी को याचना करना, किसी को कुछ मांगने रहते, कुछ नहीं मांगते थे। और उन्होंने एक व्रत लिए थे, व्रत में जब थे तो बोलते हमारा इष्ट देव गोपाल है, तो मैं भी गोपाल के सेवक के नाते मैं केवल गोरस पीऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। उनका क्या संकल्प लिए थे, केवल दूध पीऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, नहीं फल भी नहीं खाऊंगा, लेकिन गड़बड़ी था किसी बोलेंगे नहीं, बोलते नहीं थे किसी को, जो कुछ दिया उसको लेते थे, उनका व्रत था अजात चतुर्वृत्ति, किसी को याचना नहीं करेंगे, जो कुछ अपने आप लेकर तो बाबा कुछ नहीं थे वो लेते थे, मना नहीं करते। तो अभी तो किसी को बताया नहीं कि मैं केवल दुग्धहार करूँगी करके। तब वृंदावन पहुंचे, वृंदावन परिक्रमा किए, फिर चलते चलते पैदल में गए गोवर्धन 25-30 किलोमीटर, पैदल में जा करके वहाँ भी गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू किए, गोविंद कुंड नहाए, और वो इतने बड़े लंबा परिक्रमा करके खाया नहीं कुछ, बिल्कुल थके हुए आके बैठे थे। लोग देखे भी हमें, बाबा है वृद्ध हो गए हैं, लगते हैं कुछ खा पे नहीं कुछ, ब्रज में तो ऐसे देते हैं रोटी छाछ, रोटी छाछ दे दिए हमने कि रोटी छाछ अचार तो मना नहीं, क्योंकि लिए हमने लेकर फिर दूसरे दे दिए हमने, इनको तो खाएंगे फिर भूखा तो भूखा रहे, कोई देखेगा अरे यार रोटी नहीं खा रहे बाबा जी दे दे रहे, मेरे साथ फलाहारी बाबा हमने फल ला कर दे दें, फल भी नहीं खाए दे दे, किसको किसी को बताते नहीं कि मुझे तो गड़बड़ तो वही बताएंगे भी नहीं और किसी को बोलेंगे भी नहीं कि भाई मैं ये रस्ते में यही चावल खाऊंगा, और नहीं खा रहे थे। अब इसी स्थिति में उनको सेवा कैसे कौन कर पाएगा, वही सेवा कर पाएगा जो उनके भाग को जाने अंतर्जाम ही कर पाएगा। तो इसलिए परिक्रमा करके आकर गोविंद कुंड थके नादे बैठे थे, कई जगह कुछ मिला होगा प्रसाद उसको ले करके तो सिर्फ दे दिए, खाना नहीं उनको दत्त रखें को दूध पीऊंगा, वो बात किसी को बताते भी नहीं है। तब शाम के समय वो बाबा जी आए, लाला आया जो अंतर्जामी है, दूध के एक मटका दूध भर के लेकर आया, बोला बाबा क्यों भूखा बैठे हैं, हमारे गांव में जो आते हैं वो तो मांगकर खा लेते हैं, कोई भूखा नहीं रहता, तेरे जैसे कोई ढीठ बाबा आए ना उनके लिए मुझे आना पड़ता है कि मैं सबको खिलाता पिलाता रहता हूँ, सबको मिल जाता है, लेकिन तेरे जैसे कोई ढीठ आ जाए तो मुझे लाना पड़ता है, तुझे बोलता भी नहीं है, बैठा है उसका माधवपुर थक गए थे, उठकर देखे उनके चेहरा को देखे, बोले अरे इतने सुंदर, मैं तो दुनिया सारा भारतवर्ष भ्रमण कर रहा हूँ, इतने बढ़िया लड़का ये मेरे इष्ट देव तो नहीं है, ब्रज में तो जहाँ तक घूमता है गोपाल के रूप में वही तो नहीं है क्या, डाउट में पड़े। बोले थोड़ा पूछताछ करता हूँ शायद हो सके, बोले लाला थोड़ा इधर आओ, बोले क्यों, बोला तेरा घर कहाँ है, तेरा नाम क्या है, दो तीन क्वेश्चन एक साथ पूछ दिया, तेरा घर कहाँ है, तेरा नाम क्या है, तुझे कैसे पता चला तुम भूखा हो करके, पहले बताओ, तीन क्वेश्चन एक साथ पुटअप कर दिए। लाला ने सोचा बड़ा चालू है, अगर ज्यादा समय खड़ा हूं तो पकड़ना लेंगे, और दो तीन क्वेश्चन करेगा तो फंस जाऊंगा, अपना परिचय देना ही पड़ेगा, वो तो बोले मैं कैसे भागू यहाँ से, ये तो मुझे एग्जामिनेशन टेस्ट करने लगा भी नहीं। तो बोले तीन क्वेश्चन के आंसर देना ही पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा। फटाफट आंसर दे। बोले मेरा नाम तो गोपाल है, यही गांव में रहता हूँ, पास में लोकल हूँ, मैं इस लोकल गांव के रहने वाला हूँ। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको किसी पता चले वो काम होते थे बताने का, मुझे नहीं पता था। हमारे गांव से वो स्त्रियाँ आई थी, आकर गोविंदकुंड में शाम करके पानी लेकर गई, वो देख लिया, देख कर गए। मैं तो गोष्ठ में गया था गाय लेकर के, मैं आया शाम को, मुझे बोले लाला ले जाओ, बाबा बैठा है भूखा, उसको दूध दे। मैं तो उनके आदेश वाहक मात्र हूँ, मुझे क्या पता। उन लोगों ने मुझे भेजे, गोपियों ने मुझे भेजे, मैं उनका आदेश पालन करके आया हूँ। अब देखो टाइम हो रहा है, मुझे दूध निकालना है, कपड़ों में जा रहा हूँ, बोलो ज्यादा खड़ा हूँ, ज्यादा कुछ ना करे। तो इसीलिए दूध के मटका पकड़ो, फिर तेरा मटका मैं आके ले लूंगा, आप रखो मैं जा रहा हूँ। पकड़ा कर भागे, बाबा जी ने भागते सब सामने तरफ से देख रहे थे, पीछे तरफ से भी देखे, वो भी बड़े सुंदर छटा है, बड़े सुंदर दृश्य है। तो बहुत डाउट में पड़ रहे थे, इतने सुंदर हवा इसे बात कर रहा है। चलो ज़्यादा कुछ उनसे बातचीत नहीं हो पाया, जब आएगा बर्तन लेने के लिए तब पकड़ करके अच्छा से उसको पूछताछ करूँगा। भूख तो था ही और दूध खाने का विचार ही था, और दूध ही मिल गया। अपने मन चाही वस्तु मिला, जो मन को जानते तो वही तो देंगे ना करके बात बिना मानने वाले। इसलिए बोला जो भीट आपके जैसा है उनको मिल गया, उनको बताते नहीं कि उसको तो दूध उठाकर पिए। जो दूध पिए उनको लगा कि मैं कुछ गड़बड़ किया, ये तो कोई साधारण दूध नहीं, मैं कितने दिन से कोई दुधार करता हूँ, दूध पीता हूँ, लेकिन ये दूध तो ये भारतवर्ष का दूध नहीं लगता, ये तो इम्पोर्टेड आइटम है। ऐसा टेस्ट अनोखा, मैं कभी तक टेस्ट नहीं किया था दूध, तुम कई बार पिया। अब उस जमाने में तो कोई मैंने डुप्लीकेट दूध तो पीते नहीं होंगे, दूध ही इतना सस्ता था, दूसरे चीज क्यों ना पीता था, दूध भी प्रचुर परिमाण में होता था और सस्ता भी डुप्लीकेट था, सही दूध था, लेकिन वो तो गोपाल का दूध था ना, वो तो उनके आइटम था। तो पी करके बड़े स्वादिष्ट में पी करके इतने डूबते हुए तो मटका को बिल्कुल धोधा करके पास में हाथ में पकड़ कर बैठे, आएगा लेने के लिए उसको पकड़ कर, तो वही जान से होगा लगता है कि मैं ठग गया। कभी कभी सोचते हैं कि मैं भगवान के इतने ऊंचे कुट के भक्त होकर मैं भी ठग गया, नहीं 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 लगता, अब आएगा तो देखता। तो बैठे रहे और बोला था कि आओ ना, आया ही नहीं, वेट के रात ज्यादा हो गया, 10 बजा 11 बजा तो भी नहीं आया, आधी रात तक तो बैठे नहीं आया। मुझे पता बोला आएगा करके आ नहीं रहा, तो अब थक गए थे परिक्रमा आदि करके, तो वहीं बैठे बैठे सो गए। जो बहुत थक जाते ना उनके लोग बेड की बेडशीट की तकिया मच्छरदानी कुछ जरूरत नहीं पड़ता, ऐसा नींद होता है कि क्या कहें, है ना, बिना कुछ इतना नींद चुस्ती में ले लेते। लेकिन ये जो श्रम नहीं है जिसके पास इस प्रकार, तो उनको तो सब चाहिए, तब भी नींद ना हो ठीक से, उसमें पड़ता है ठीक रेस्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि इसे बात ठीक से नहीं किया था ना, कैसे रेस्ट करेंगे ठीक से। और जो थके होंगे उनको कहते हैं कि जो सही ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग लेते हैं उनको कैसे पता चलेगा उनके लक्षण है, तो बेड में गए 2 मिनट लगा कि पक्का कि बहुत कुछ नहीं, कुछ फेंट हो जाएंगे जाकर पड़ेंगे तो एक बार। तो इस प्रकार वो तो वृंदावन परिक्रमा किए थे, पैदल में गए, फिर गोवर्धन परिक्रमा किए थे, वो कल कल दूध पिए एक लोटा उसमें सो गए, और सो गए और जागृत में तो आया नहीं, वो सोते हुए स्वप्न में आया, वही लड़का आया स्वप्न में। इसलिए लेकिन आकर के इस बार बर्तन लेने के लिए नहीं आया, उनके लिए निकले आया, आकर के बाबा के हाथ पकड़ कर खींचा, अपना चलो चल। अरे कहाँ चलो, अरे मैं तेरे लिए कितने साल से वेट कर रहा हूँ, आपके बाद देख रहा हूँ कि कब माधवनपुरी आएगा, मुझे उद्धार करेगा, मुझे नहलाएगा धुलाएगा खिलाएगा खिलाएगा, मैं खाया नहीं पिया नहीं, इतने भूखा पड़ा हूँ इतने सालों से, तुम भूखे पड़े अभी तो, तू बता रहा था कि सारे दुनिया को तुम्हें खिला रहे, तू खुद नहीं खा रहे ना, नहीं मैं नहीं खा रहा, मैं भूखा पड़ रहा हूँ, तू आज मुझे खिलाएगा इसलिए बैठा होगा, तो तुझे हमने खिलाफ नहाया ही नहीं खाया ही नहीं कई बार सालों से। और उनको हाथ पर खींच के लिया, बोले देखो झाड़ी के नीचे पड़ा हूँ, कहानी सुना दी पूरा। बोला मैं इस एरिया के अधिकारी हूँ, इस एरिया के मैं अधिकारी हूँ। अरे अधिकारी हो फिर भी भूखा कहेंगे? तू अधिकारी है आप तो बस उसके साथ नहीं, अधिकारी हूँ फिर भी भूखा इसलिए हूँ कि मैं गोवर्धन का अधिकारी गोवर्धन में बैठा था, नाम मेरा गोपाल है, वहाँ था। लेकिन एक बार मुसलमान लोग के अटक का हवा आया, लोग ऐसे रिमर आया तो मेरे सेवक लोग मुझे उठा के गए पहाड़ से नीचे ला कर यहाँ मिट्टी में गाड़ कर मार कर चले गए। उनको से पढ़ा हुआ और क्या कर, कोई सेवक नहीं, कोई नाना नहीं, खाना में कुछ नहीं। और मैं तो क्या कर रहा हूँ कि कैसे खाऊँ, माधवंदपुरी आएगा मुझे खिलाएगा ना लाएगा, इतने गर्मी इतनी परेशानी में बैठा, जबकि मैं सारे दुनिया को महान को खिलाता हूँ पिलाता हूँ सबको व्यवस्था करता हूँ, लेकिन मुझे मैं नहीं कर पाता। सही बात है, भगवान पूरे ब्रह्मांड के संसार के पालक है, लेकिन उनके लिए वो खुद नहीं करेंगे, उनके लिए कौन किसको पूजा करते हैं? भक्त। और ऐसे भक्त तो होंगे, ब्रजवासी के भक्त नहीं थे ना। माधवेंद्रपुरी कब आएगा वही मुझे नहलाएगा भुलाएगा खिलाएगा। अब देखे देखा जी, अब सुबह हो गया, उठकर देखे बोले क्या है, सपन था सच था, देखे कि सचमच वही झाड़ी है, यही स्थान है। तो लोगों को बुला करके सर्च किए, थोड़ा खुदाई किए तो विग्रह प्रकट हुआ, तो उनका तो नाम फैल गया कि बाबा सिद्ध बाबा आया है, विग्रह प्रकट करवा दिया। देखते ही देखते एक घंटे में बड़ा सिद्ध है उनके पास, तो अरे सब गाँव वाले इकट्ठा हो गए, बाबा सब छुन लेंगे, क्या करें आपको विग्रह क्या करें ना, सब आ जाऊँ उठा कर ऊपर पहाड़ में, पहाड़ के ऊपर ले गए एक पत्थर के ऊपर उसको टिका दे दी घरवाली। बोले अब भगवान का अभिषेक कराएंगे, कैसे अभिषेक कराएंगे वो बताओ, हम तैयार हैं ना। जिनका घर में से नया मटका होगा सब तो ले आओ पानी, सब कुंड से पानी, अच्छा पानी ले आओ स्नान करके। अरे सकड़ो मटका ले पानी भर भर करके लाए, खूब पानी डाल करके अभिषेक किए, खूब अभिषेक किए, दुग्धाभिषेक किए, पंचा पंचगव्य पंचामृतम तीर्थ जलम हर प्रकार से अभिषेक किए खूब। फिर वस्त्र आदि धारण कराए और फिर बोले अब तो भोग लगाना है, क्या भोग लगेगा, अभी संदेश संदेश मिल के आइटम लाओ, अभी बाल भोग लगेगा, बाद में फिर रोटी सब्जी बनाकर फिर खूब खिलाएंगे। अब इतने लोग इकट्ठा हो गए आसपास गाँव के, वर्णन करता है जिस उसी दिन सुबह सुबह स्वप्न देखे थे उन्होंने, सुबह सुबह ठाकुर जी को प्रकट कराए, दो पहर तक इतने बड़े फेस्टिवल हो गया। ये वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि हजारों संख्या में लोग प्रसाद खाए, इतने विशाल अभिषेक हुआ, बहुत बड़ा श्रृंगार हुआ, भव्य रूप में फेस्टिवल हो गया। ना तो कोई फेस्टिवल कमेटी मीटिंग हुआ था, ना कोई नोटिस में लगाए थे, ना कोई पैम्फलेट बांटे थे, ना तो कोई फंडरेजिंग हुआ था, ना तो कोई प्लानिंग हुआ था, नथिंग। जस्ट आज सुबह उनको प्राप्त किए, दोपहर तक इतने सक्सेसफुल फेस्टिवल, कोई पॉइंट नहीं कोई बता दे, नो मैनेजमेंट, नो मीटिंग, नो प्लानिंग, नो फंडिंग, नथिंग। ये तो शुद्ध पकड़ गिरधारी है, एक नया पैसा मांगते भी नहीं किसको, हजार लोगों का प्रसाद बनाकर खिलाना पिलाना बड़े व्यवस्थित रूप से हो गया। और हम छोटा था, 500 लोग भी नहीं खिला पाते होंगे, लेकिन 500 दिन पहले से मीटिंग, 50 अधिकारी मेंबर बनेंगे अलग अलग अधिकार के डिपार्टमेंट के, कितने बार मीटिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे, व्यवस्था फंडिंग ये सब करके लास्ट में गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं था उनके पास, नथिंग। एक व्यक्ति थे, कुछ भी सहारा नहीं था, लेकिन क्या सहारा था, भगवत कृपा। अगर उसको जो सहारा किया, ये सब विष्णु कुछ नहीं, कुछ क्या आवश्यकता नहीं, उन कृपा के ऊपर जो भरोसा किया, ये इससे ही सक्सेस होता है। और ये वर्णन आता केवल एक दिन का नहीं फेस्टिवल के, उसी दिन फेस्टिवल को देख करके दूसरे दूसरे गांव से लोग आए, बोले बाबा ये तो ठीक नहीं किया, आप केवल इस्लाम वालों के ऊपर इतनी कृपा किया, हम तो बच गए ना, क्या हाँ काला ना है हमारा भी ऐसा करो, ठीक है ऐसा बताओ क्या क्या समस्या हम लेकर आते हैं। बात देखिए बाबा, तो दो साल लगातार एवरी डे अन्नकूट उत्सव होता था, एवरी डे बढ़ से बढ़कर, वो हम उनसे बड़ा करेंगे, हम उनसे बड़ा करेंगे। पचास लोग रोटी बनाने लगे, कितने सब्जी बनाने लगे, कितने सुक्का बनाने लगे, कितने चावल बनाने लगे, बहुत भारी मात्रा में होता था उत्सव एवरी डे। और डोनर आए मथुरा से, बड़े बड़े दुबे डोनर आए, आकर के मंदिर बना दिए, गाय जाने दिए, हजारों गाय के गौशाला बन गया, मंदिर बन गया, कई बाबा जी सेवक बन गए, बोलते हैं कई ब्रजवासी ब्राह्मण उनसे शिष्य हो गए, उनके सेवक बन गए। मतलब वो तो बेचारे अकेले थे, अब तो बहुत बड़े टेम्पल मैनेजमेंट हो गए। अरे सिर्फ इतने बड़ा गौशाला, एक मंदिर, हजार लोगों को प्रसाद, इतने सारे अनुगामी और भव्य पूजा, इट्स मोर देन अ टेम्पल। और कैसे आप पास तो डिपेंडेंट नहीं, इतने डिपेंडेंट सुधर के, और अकेले अकेले बूढ़ा भिकारी है, कुछ नहीं, कुछ बोलते भी नहीं थे, कितने मैनेजमेंट करेंगे। दो साल के बाद तो भजन कर पाए, यहाँ इतना ये करना वो करना मन में रोते होंगे। तो भगवान ने सोचे, बेचारा माधवन तो सोचता है कि मैं कहाँ पहुँच गया आकर के, ये तो कोई महंत से बड़ा बड़ पोस्ट में आ गया, मैंने कोई असिस्टेंट नहीं, ये क्या कर दिया सर, इतनी प्रॉपर्टी, इतने बड़े गौशाला, इतने बड़े मंदिर, इतने अनुगामी, ये बड़े फेस्टिवल एवरीडे भारी काम फंस गया आकर के, तो मेंटेन करना। बेचारा अपने आप को खाने के लिए जुटा नहीं पा रहा था, वो क्या बैठता था, वो इतने सारे क्या से क्या बना दी। तो भगवान ने बोले, माधवेंद्र गर्मी महसूस हो रहा, अरे वो तो डेली अभिषेक करा ना, पानी डालने से कुछ नहीं, बहुत भारी गर्मी हो रहा। बोले और क्या एसी कूलर तो है नहीं, कट लगा दो, जितना कर सको पंखा अलग कर रहा हूँ, उसी में गर्मी नहीं जा रहा, क्या करूँ। भगवान ने स्वयं बोल रहे गर्मी नहीं जा रहा है, तुझे चंदन लेकर करो, चंदन तभी वो यूपी साइड लोग जानते नहीं थे चंदन हो क्या होता है क्या चीज, इसीलिए आप जाएंगे वृंदावन इस साइड में कोई चंदन पुनिया जानते नहीं, चंदन पुनिया क्या होता है, केवल घोड़िया का जो विग्रह है वो एक दिन साल में चंदन लगाते, बाकी कोई चंदन को लगाते नहीं, चंदन होने कोई ज्ञान नहीं। अभी भी वृंदावन में चंदन पुनिया दिन भी जाते, जो घोड़िया की विग्रह नहीं है वहाँ चंदन नहीं लगता, केवल घोड़ी के क्योंकि फॉलो करते हैं उनको, और ये लोग चंदन लगाते हैं, क्यों भी जानते हैं वैसे करते हैं चंदन, तो और वो भी लगाते हैं एक दिन, बाकी इतना गर्म नहीं होता है। तो बोले कि चंदन ले, चंदन कहाँ से लाओ, ना यहाँ तो कोई नहीं, कोई लगाते भी नहीं, आप जाओ ओडिशा और साउथ में वो होता है, जगन्नाथपुरी जाओ, यहाँ से चंदन और कांफड़ लेकर आओ, घिसकर मुझे लेप लगाओ तो मुझे थोड़ा ठंडा महसूस हो। तो भगवान को सचमुच गर्मी थोड़ी लग रहा था, प्लानिंग भगवान की ये था, ये बेचारे अकेले भजन करने वाले संत फंस गए मैनेजमेंट में, तो अभी जरा परेशानी है, अंतर जान गए, बोले वो इनको सुविधा देना चाहिए अपना भजन करे, तो इसी के लिए उनको ऑर्डर दिए, बोले चंदन लाओ। तो सोचे होंगे आपकी सेवा में किसी छोड़कर जाऊँ, किसको भेज दूँ, अनेक सेवक है, किसी भेज में जाओ पैसा पत्र इकट्ठा कर जाके लेकर आओ। सर तो ठाकुर जी बोले ना माधव, तो तुझे ही जाना होगा, बाकी किसी को नहीं, तुम ही जाना पड़ेगा। और तभी जमाने में कोई ट्रेन प्लेन कार तो था नहीं, पैदल में जाना होगा, पूरा लंबा रास्ता लेकर के लगभग मोर देन 2,500 किलोमीटर है गोवर्धन से पूरी तक पहुँचना, और क्योंकि बंगाल होकर घूम के जाना पड़ता था, और रोड में कोई नदी में ब्रिज नहीं हुआ करता था, रास्ता कोई इसमें पक्का नहीं था, जंगल पहाड़ नदी होकर के मुझे तो जाना पड़ता था, और वो भी किसको मांगने वाले है नहीं थे, कोई दे तो खाए वो भी देगा क्या, कौन जानता है, केवल दूध पीता करते, कौन देखा, कोई कुछ दे देगा कुछ देखने के लिए, उसको खाएंगे भी नहीं। इस प्रकार से गए, अब जा करके जब पहुँचे पैदल ऐसे भी वर्णन आता है कि जब जाने के लिए विचार कर रहे थे, बोले कि मैं जाऊँ यहाँ से, ये सब इतने बड़े मैनेजर कौन देखेगा उसको, कैसे कोई बाकी तो जो चल रहा है, लेकिन आपके पूजा कुछ ही चलेगा, आपकी सेवा पूजा तो मैं ही कर रहा हूँ, उनको कौन करेगा। तो अनेक ब्रजवासी ब्राह्मण शिष्य उनके थे, लेकिन उन्होंने किसी को सेवा अधिकार नहीं दिया। वेट किए, इसमें उल्लेख कि बंगाल से जो आकर पहुंचे ब्राह्मण उनको सेवा अधिकार दिए, फिर गए वो भरोसा करके गए, जानते कि वो सेवा करेंगे ये नहीं करेंगे, तो गए उनके ऊपर भरोसा करके गए। सो गए जाकर के आपको पता है उनके लिए भगवान ने अपने कैटल चेंज कर दी, गोपीनाथ नाम था, फिर चोर हो गए, उनके लिए चोरी की। अब चोरी किस लिए किए पता है, किसने चोरी की? माधनपुरी के लिए क्यों चोरी की भगवान ने?
गोपाल जी को भोग लगाना चाहते थे, वो टेस्ट करना चाहते थे।
असली रहस्य ये है कि उसके लिए अब जो गोपाल जी का टेस्ट चोरी करने के दौरान उसको बोल देते दे दो करके, टेस्ट करना था ना, कोई सेवक को बोल दे उनको दे दो, लो खा लेगा, टेस्ट करना था ना, लेकिन इसमें काम नहीं बनना था, काम चोरी करने से ही बना। टेस्ट करने की तो किसी प्रकार से दे देते टेस्ट करते, चोरी करके टेस्ट नहीं करा। चोरी इसलिए किए, पहले से तो हमको मानना पड़ेगा चोर इनको क्यों कहेंगे, ये जो गौशाला ये दूध हमारा बाप का है क्या, उन्हीं का तो है, उन्हीं का चीज वो लेंगे तो हम चोर क्यों कहेंगे। आप मोबाइल पड़ा है आप उठा के ले ले, हमसे किस करेंगे चोरी क्यों करेंगे, कोई कहेंगे चोर? जो अपना सामान कोई ले तो चोरी किसे कहा जाएगा, जब कोई दूसरे का सामान उनको बिना बोले हम ले तो उसको चोरी माना जाए, वो तो दूसरे का सामान था नहीं, उन्हीं का ही था, उन्हीं के लिए भोग लगा रहा था, उन्हीं के भोग था, गाय उनके थे, स्थान उनका था, मंदिर उनका था, सेवक उनका था, और उससे एक बारह से एक कूलर रख लिए धोती के नीचे छिपा कर बोलते हैं चोरी कर। और फिर चोरी करेगा कोई और एक बात है, आप किसी का सामान चोरी किए और रात भर में चोरी करने के बाद उसने उठा मैं चोरी किया, कोई बोलेगा ना? बोलेगा किसी को बताना चले, किसी को बताना चले वो चोरी किया, देखो बदनाम हो जाएगा कोई ठिकाना। और जाकर रात जबरदस्ती उठा रहे हैं, उठो पुजारी परेशान हो, रात हर में उठूंगा, अभी नहाना पड़ेगा, दीप लगाना पड़ेगा, अरे जो चोरी किया है उसको उठा कर बोल रहे हैं, सर कोई चोर ऐसा करेगा कोई अद्भुत है, कोई चोर ऐसा करेगा नहीं, चोरी भी करेगा और तो बताया नहीं मैं चोरी किया करके। पुजारी तो हताश हो गया, बोले ये क्या आप छिपा कर, आप तो पूरा ले सकते थे, आप क्यों इसको रखे छिपा कर? बोले ज्यादा मत करो, लेकर जाओ टाइम खराब करो, जाओ बोले क्या करूँ, लेके जाओ, देख लिया ना धरती के नीचे, हाँ लेके जाओ जहाँ के बैठा है माधव मंत्री, मैं किसी पहचानूंगा ना आवाज दो, कोई माधव मंत्री है गोपीनाथ ने आपके लिए चोरी बोलना कि चोरी करके हो जाता है। पुजारी से बोला पता नहीं एक ठाकुर तुम कैसा है, तुम्हें चोरी करने की जबरदस्ती बोलता है तो बोलो मैं चोरी क्या करके, मैं चोरी करके रखा हूँ, आपने आप जबरदस्ती चोर बोलना है तुम्हारी ऐसे में आप लिया। पुजारी जाके दिया मधुमंत्र को बुलाया, मधुमंत्र देखा कोई पुजारी है, वो सोच रहे थे मैं तो खाने की इच्छा कर रहा था लेकिन भोग नहीं लगा था तो मैं तो अपराध किया, इसलिए मन में अभिमान करके बैठे थे। देखे कि पुजारी बोले चार मुझे डांटेगा पिटेगा, हम पकड़ लिया, पता चले गया वो आए, बोले नहीं हूँ मालूम, आप हो? हाँ नहीं हूँ, तो बोले पकड़ो उसको, दंडवत किया। आप ही हो ना? ना चलो सुनिए, बोले देखो ये जो कुल्लड़ वाला खीर है ना, गोपीनाथ ने चोरी करके मुझे बोले कि मैं चोरी करके रखा हूँ, इसीलिए मुझे भेजे आपको देने के लिए, आप लो उसको, आप पाओ उसको। फिर उनका प्रणाम दोबारा किया, परिक्रमा किया, प्रयास, और आते समय इतने उत्फुल्लित होकर पुजारी आ रहा था, बताओ ये कैसे भगत हैं, ठाकुर जी ने उनके लिए चोरी किए, मुझे उठाकर उनके पास भेज रहे हैं, कैसे भक्त है। माधवपुरी तो खेत तो खाए कुल्हड़ भी खाए, जो भी देखे पुजारी की इस प्रकार भाव, मेरे बाप रे बाप, अगर मैं यहाँ रहूँ काल तो सारे गांव इकट्ठा हो जाएंगे, बोलेंगे आपके लिए ठाकुर जी हमारे चोर हो गए, आप इतने महान हैं इतने बड़े हैं तो जो भक्त हैं वो आपने मान नहीं चाहते हैं, अमानी है, तो रात भाग गए, वहां से छोड़ करके रास्ता से भी नहीं गए, घूम घूम कर एक गांव एक गांव होकर के गए पूरी। लेकिन जो जो इसमें लिखा गया है, जो प्रतिष्ठा है उसका स्वभाव है, जे ना चाहे ना, जो नहीं चाहेगा उसी को मिलेगा, जो चाहेगा उसको नहीं मिलेगा, जो चाहेगा उसको नहीं मिलेगा, जो नहीं चाहेगा उसी को मिलेगा। प्रतिष्ठा की रीति है, वो नहीं चाहते थे इसीलिए छिप छिप कर जरूरत पहुंचे, जहां से पुरी में पहुंचे, पुरी में पहुंच करके पूछे बोले कि दुकानदार को, बोले भैया ये मंदिर जाने के लिए ही रास्ता है ना, तो पुजारी थोड़ा रुकिए दुकान खुला था, बोले तो बोला अच्छा आप आपका नाम क्या बताए, नाम से क्या बताऊँ, मैं एक बैरागी हूँ और मैं जाना चाहता हूँ पूरी रास्ता बता दी, नहीं बताया आपका नाम क्या, ना नाम क्या है, मैं तो एक सही से चल रहा हूँ नहीं बताना चाहता। तो पूछा बोला आपका नाम माधवनपुरी तो नहीं है, ना हाँ आपको बताया आप ही है ना, ठीक है मैं आता हूँ ना रास्ता क्यों बता, मैं चल रहा हूँ आप ही है ना, मैं दुकान बंद कर दिया बंद करके आ गया, मैं चल रहा हूँ आ करके चला, बोला अच्छा क्या आपने आ गया, लेकिन आप मेरे साथ चलो ना, मैं साथ में चलूँ, साथ में चल के माधवनपुरी लेकर गया मार्केट में, दोनों साइड दुकान ए पता है यही है इनके लिए धातु चोरी किए थे यही तो है, वो भी आ गया था नहीं है ना, वो भी आ गया ए पता है ना यही है, दोनों तरफ से बिल्कुल एडवर्टाइज करते करते सब इकट्ठा करते करते सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए मंदिर पहुंचते पहुंचे, सब आकर बाबा यार आपके, क्योंकि उनके पहले खबर पहुंच चुका था, तुमने वायदा शास्त्र को लोग बोली से बोलते बोलते गांव से गांव एक खबर पास जाकर वो पहुंचने से पहले ये मैसेज पहुंच चुका था, मैसेज पहुंचा तो इसे एक बाबा थे जिनके लिए ठाकुर जी ने चोरी की, सब डाउट करे ढीवा में तो नहीं आओ बस पता तो लिया जाएगा। तो इसी एक कुल्हड़ चोरी किए थे भगवान, इसी के कारण उनको 80 किलो चंदन 40 किलो कपूर मिल गया फ्री, लोग लाके दिन में किसी ने आया है, अरे मैं तो आया था बल से थोड़ा चंदन चंदन मेरे घर 2 किलो में देता हूँ, मेरा भी 1/2 किलो मैं देता हूँ बाबा, अरे आपके सेवा में आ गया, सब ने इकट्ठा कर वो राजा तक खबर पहुंचे, राजा आकर बोला मैं देता हूँ, वो 20 किलो चंदन दिया, इसने थोड़ा कपूर दिया, वो भी लिख करके स्टाम्प करके साइन करके लिखा, कोई रास्ता में चेक पोस्ट भी आपको फुल एग्जेम्पशन 100% टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दिया, और बोले वो मुठा कर इतने सारे 80 किलो 40 किलो एक में उठा दो, नहीं 3 आदमी इतने लेकर जाओ उठा के लेके जाएंगे पेमेंट हम करते हैं, ये व्यवस्था बेचारे का प्रदत्त सुनने बूढ़ा आदमी को कहाँ से मिलता चंदन कपूर मिल पाता इतने का सूचित, तो इसीलिए ठाकुर जी ने चोरी किए थे, इसी के लिए चोरी किए थे, बाकी टेस्ट के लिए नहीं, टेस्ट के लिए करते तो उनको भेजते गोपाल से भेजा उनको, बोले ना मत जा वहीं रहो, नो गो डोंट गो टू वृंदावन, जब वृंदावन जाके सेवा करना था तो वृंदावन भेजे तो बोले ना यहीं रहो, चोरी तो इसलिए किए थे कि उनको मिलने के लिए फायदा होगा, एक भगवान ने एक कुल्हड़ चोरी किए तो इतने बड़े हल्ला हो गए, तो पूरी में तो नाम खिल गया, उनको देख करके इतने ये किए कि इतने सारे इकट्ठा कर लिया थोड़ी दिन में करके लेकर आए, बोले जिसने मेरे लिए खीर चुराया, इसने मेरे लिए पूरा नाम फैला दिया, इसने मेरे लिए इतनी संपत्ति दे दिया, केवल एक चोरी करके क्या क्या नहीं कर दिया मुझे दुनिया में, तो उसको तो एक बार दर्शन करना चाहिए, तो गए दर्शन करने, जैसे मेन रोड रमुना की ओर मोड़े बालेश्वर रमुना बोले से, तो गांव के लोग तो देख रहे जान मेरे ही बाबा तो था आ रहा है, मतलब तो ग्रांड रिसेप्शन, उजर आकर हाथ जोड़ के बोला बाबा आज ऐसा ना करना पूरा 12 कुल्हड़ तुझे देता हूँ, तो मुझे रात को फिर उठना पड़े, अमर ठाकुर जी को दोबारा चोरी ना करना पड़े, दोबारा मुझे रात को उठ करके ऐसा काम ना करना पड़े, तुझे पहले दे देता बाबा तू पूरा लेट ले पूरा लेट तेरा ही तू ले ठाकुर जी को कष्ट देना, ऐसे ट्रीटमेंट किए उनको खूब खाप के बड़े प्रेम से रहे, और दूसरे दिन बोले थे कि जाऊंगा करके, उसी दिन रात तीसरा बार ठाकुर जी स्वप्न में आए, बोले माधवेंद्र ऐसा करो वृंदावन जाने से बोलते हैं, अरे आप ये तो बोले थे वृंदावन जाऊंगा इतने कष्ट में आया सब इकट्ठा करके निकल जाना, तो कोई जरूरत नहीं मैं क्या करूँ सब नहीं चंदन घिस कर मुझे चढ़ा, ये स्वप्न कौन देते मालूम गोपीनाथ नहीं गोपाल जी, गोपाल जी कहते हैं तो ऐसा करो जो चंदन कपूर घिस करके गोपीनाथ में चढ़ाओ, मुझे कूलिंग इफेक्ट होगा, मैं ठंडा महसूस करूंगा। आजकल हाईटेक दुनिया हो गया है, एक एक मशीन निकालते हैं, क्या रिमोट बोलते हैं ना उसको, रिमोट कितने मीटर दूर से काम करता है, टैप करते हैं चाबी दरवाजे, कार के चाबी दरवाजे खोलते हैं, टीवी वगैरह भी चला देते हैं, कितने दूर, एक दो किलोमीटर से काम करेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा
100 मीटर।
हमारा इतने बड़े बुद्धि है कि 100 मीटर तक बिना पहुंचे रिमोट में काम कर दें। अब ये बूढ़ा बाबा देखिए 2500 किलोमीटर दूर से यहाँ चंदन लगाई, यहाँ ठंडाई क्या रिमोट है ना, ऐसा कोई सुना, ओनली 2500 किलोमीटर का वहाँ चंदन लगाएगा ठंडा उनको बिना ठंडा नहीं मिलता, अरे ओनली मिलता है वो बेचारे लेट करके बैठेंगे वो सारे ठंडा लगे, बताओ ऐसा कभी होता है, लगा के तुम यही से भगवान की दशा वहीं रहते, फिर वहीं रहे एक दो बार पूरी गए आकर यहीं रहे, अंतिम समय तक वहीं रहे, ब्रजवास का वास्तविक अधिकारी वही नहीं थे। यहां तक महाप्रभु कहते हैं वो एक पद गाते थे माधवनपुर हमेशा, अई दीन दया जनाथ मथुरा नाथ है तमा बोलो किम करो मियां, ये पद गाते थे जब महाप्रभु माधवनपुर की कहानी अपने भक्तों के सामने बोलते थे, बोल बोल करके इतने भाव में आकर बोले, बोले ये जो पद हमारे दादा गुरु गाते थे ये पद का तो अधिकारी पूरे विश्व में तीन ही लोग है, तीन के अलावा कोई है ही नहीं, दूसरा चौथा कोई है ही नहीं। सब पूछे कौन तीन है, नहीं ये पद का जो रचयिता जो गायिका है साक्षात श्री राधा जी, राधा रानी ही भाव गाती थी इस पद को, अय दीन दयाल नाथ मत्तानाथ तम अवल से किम करोगी हम, तो ये पद राधा रानी गाती थी वही जानती थी, यही एक ही व्यक्ति, दूसरा मैं, तीसरे माधवन पूरी, उसके अलावा चौथा कोई है ही नहीं। उसका मतलब साक्षात राधा जी के सखी साक्षात ब्रजवासी हैं, उनको ब्रज से हटाकर नहीं हटा, है ना, तो भगवत आज्ञा पालन करके रहना यही है गुरुदत्त देश, वही है हमारे लिए वृंदावन। इस प्रकार उन्होंने उन्होंने सेवा किए थे, किस भी कहानी क्या मतलब अकेले आप बोलते मैनेजमेंट की बात में, इसलिए कहना सिंगल हैंडेड आदमी, कुछ ना फंड था ना कोई सपोर्ट था नथिंग, और ये नियम लिए थे किसी कुछ मांगूंगा ही नहीं, क्या करके संभाल दिखा दिए। और हम इतने सारे कमिटी मैनेजमेंट मीटिंग इसी में सारे दिन बिगड़ गया, होता कुछ नहीं है ना, बल होना चाहिए उनके ऊपर भरोसा करें, एवरीथिंग विल गो परफेक्टली, है ना। हरे कृष्ण। ओके।